मोह मात्र ही नहीं, सभी ऐसे विचार बंधन हैं जो सिखलाते हैं मनुष्य को प्रकृति और परमेश्वर दो हैं। जो भी प्रकृत हुआ वह दूर हुआ ईश्वर से, ईश्वर का जो हुआ उसे फिर प्रकृति नहीं पाएगी। शब्दार्थ प्रकृति यानी जैव स्थूल जागतिक केवल बंधन मात्र ही मनुष्य को दिग्भ्रमित नहीं करते, अभी तो मानव के अंदर एक विचार तत्व भी है जो दूसरे मनुष्य के चित्त में यह थोपने का प्रयत्न करता है कि प्रकृति और परमेश्वर दो भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। मनुष्य एक ही शक्ति को अंगीकृत कर सकता है। यदि उसने एक बार ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो वह प्रकृति के हाथों से जाता रहेगा, अर्थात प्रकृति फिर उस पुरुष को पाने में असमर्थ हो जाएगी। प्रकृति नहीं माया, माया है नाम भ्रमित उस धी का, बीचों बीच सर्प सी की जिह्वा फटी हुई है। एक जीव से जो कहती कुछ सुख अर्जित करने को और दूसरी से बाकी का वर्णन सिखलाती है। शब्दार्थ भ्रमित, भ्रम अथवा संदेह में डालने वाले। धी यानी बुद्धि, वर्जन यानी परित्याग। व्याख्या, जो व्यक्ति प्रकृति माया तो कहकर उसका तिरस्कार करता है वह दिग्भ्रमित है, वास्तव में प्रकृति माया नहीं है, अपितु माया तो वह बुद्धि है जो सदा भ्रम में रहती है। सब के समान उसकी जिह्वा बीचोंबीच फटी हुई है। अपनी एक जिह्वा से तो सुख का अर्जन करने की बात कहती है और दूसरी तरफ प्रकृति आदि की ओर से अपनी वृत्ति को हटा लेने का उपदेश देती है। विशेष उपमा अलंकार। मन की कृति यह द्वैत प्रकृति में सचमुच द्वैत नहीं है। जब तक प्रकृति विभक्त पड़ी है श्वेत श्याम खंडों में विश्व, तभी तक माया का मिथ्या प्रवाह लगता है। किंतु शुभाशुभ भावों से मन के तटस्थ होते ही न तो दीखता भेद, न कोई शंका ही रहती है। शब्दार्थ विभक्त यानी विभाजित। व्याख्या, द्वैत भाव की रचना मन ने की है। वास्तव में प्रकृति में किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं है, वह निश्चय ही परमेश्वर की सहचरी है। मनुष्य द्वारा निर्मित भ्रांत धारणा से जब तक यह प्रकृति काले और सफेद खंडों में विभाजित है तब तक यह संपूर्ण विश्व हमें माया प्रवाह दृष्टिगत हो रहा है। जिस दिन मनुष्य इन शुभाशुभ भावों से परे हटकर अपने चित्त को तटस्थ कर लेगा तब प्रकृति और परमेश्वर में न तो कोई भेद दिखाई देगा और न ही हृदय में किस प्रकार की कोई शंका जन्म लेगी। राग विराग दुष्ट दोनों दोनों निसर्ग द्रोही हैं। एक चेतना को अजुष्ट संकोचन सिखलाता है और दूसरा प्रिय अभिष्ट सुख की अहित दिशा में कहता है बल सहित भावना को प्रसरित होने को। दोनों विषम शांत समता के दोनों ही बाधक हैं, दोनों से निश्चिंत चेतना को अभंग बहने दो। करने दो सबकृत उसे निर्लिप्त सभी से होकर लोह भीत संघर्ष और यम नियम संयमों से भी। शब्दार्थ राग यानी मोह, विराग यानी वैराग्य, निसर्ग द्रोही यानी जन्मजात शत्रु, अजुष्ट यानी प्रसक्त, अहिप्रेत यानी अलक्षित, लक्षित प्रसारित यानी फैलने दो, अभंग यानी बाधा रहित, निर्लिप्त यानी निष्काम भाव से। व्याख्या, राग तथा वैराग्य दोनों बड़े दुष्ट हैं तथा स्वभावतः जन्मजात शत्रु हैं। प्रथम चेतना को प्रशस्त करके उसमें संकोचित प्रवृत्ति का उदय करता है। भाव यह है कि मोह की प्रवृत्ति मनुष्य को निकृष्ट रसातल में डाल देती है, उसकी प्रवृत्तियाँ घोर स्वार्थी बन जाती हैं। अपने अधिकार में आई हुई वस्तु को वह आजीवन किसी को देना नहीं चाहता और दूसरे की वस्तु को छल बल से अधिकार में करना चाहता है। दूसरी वृत्ति वैराग्य की है, यह बलपूर्वक भावना को अपने अभीष्ट सुख के लक्ष्य की ओर प्रसारित करने के लिए विवश करता है। इस प्रकार दोनों राग वैराग्य बड़े भयंकर हैं, चित्त की शांति और अद्वैत के दोनों बड़े भारी बाधक हैं। अतः इन दोनों का परित्याग करके हे पुरुर्वा तुम अपनी चेतना को निश्चित तथा अभंग रूप में बहने दो और लोभ भय संघर्ष मृत्यु नियम तथा संयम आदि बंधनों से चेतना को निर्लिप्त करके उसे हर एक अभिच्छित कार्य करने दो। इसी में मुक्ति है और आनंद है। विशेष ईशावास्योपनिषद में विद्या और अविद्या तथा संभूति और असंभूति दोनों का है को ही ब्रह्म कहा है, जो क्रमशः विराग और राग के हिरंच मात्र भेद से परे आए हैं। जो केवल विद्या की उपासना में ही लीन रहते हैं वे अज्ञानी हैं, किंतु वे उनसे भी अधिक अंधकार में हैं जो केवल अविद्या में रहते हैं। अंधम तमह प्रविशंति ये अविद्यामुपासते। हम इच्छुक अकलुष प्रमोद के पर्व प्रमुद निरामय विधि निषेधमय संघर्षों यत्नों से साध्य नहीं है। आता है वह अनायास जैसे फूटा करती हैं डाली से टहनियाँ और पत्तियाँ स्वतः टहनी से या रहस्य चिंतक के मन में स्वयं कौंध जाती है, जैसे किरण सदृश लोक की भेद अगम सत्ता का। शब्दार्थ अकलुष यानी कलुष रहित, प्रमोद यानी आनंद, निरामय यानी रोग, विधि निषेधमय यानी क्या करने योग्य है और क्या नहीं, स्वतः यानी अपने आप। व्याख्या, यद्यपि हम सब जीव सदैव कलुष रहित राग द्वेष से मुक्त आनंद को पाने के इच्छुक हैं, लेकिन यह निरामय निरोग आनंद विधि निषेधमय संघर्षों तथा द्राविड प्राणायाम के प्रयत्नों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार शाखा से टहनी तथा टहनी से कोमल कोमल पत्तियां अपने आप ही निकलती हैं, अथवा जैसे रहस्य चिंतक के मन में अदृश्य लोक की अगम सत्ता का रहस्यमय प्रकाश अपने आप कौंध जाता है, उसी प्रकार हमारे चित्त में आनंद का यह स्रोत अनायास ही फूट निकलता है। इसके लिए न तो बुद्धि को तर्क जाल में फंसने की आवश्यकता है और न दिल को बेचैन करके रात दिन जागने की आवश्यकता। यह अकाम आनंद भाग संतुष्ट शांत उस जन का, जिसके सम्मुख फलाशक्ति में कोई ध्येय नहीं है, जो अविरत तन्मय निसर्ग से एकाकार प्रकृति से बहता रहता अमृत पूर्ण निष्काम कर्म धारा में, संघर्षों में निरत विरत पर उनके परिणामों से सदा मानते हुए यहाँ जो कुछ है मात्र क्रिया है। हम निसर्ग के स्वयं कर्म हैं, कर्म स्वभाव हमारा, कर्म स्वयं आनंद, कर्म ही फल समस्त कर्मों का। अर्थात शब्दार्थ में अकाम यानी निष्काम, जिसमें कर्म के बाद उसके फल की इच्छा न हो तथा उस कर्म के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति न हो। अविरत यानी लगातार, निसर्ग यानी परमेश्वर, निरत यानी लगा हुआ, विरत यानी लगाव से रहित, उदास। व्याख्या, जो व्यक्ति कर्म करने के पश्चात न उसके फल की इच्छा करता है और न ही उसकी कोई आसक्ति रहती है, वही निष्कामी व्यक्ति अपने से संतुष्ट एवं शांत रहकर आनंद के अंश की उपलब्धि कर सकता है। जो निरंतर परमेश्वर की महिमा तथा लीला में डूबा रहता है, प्रकृति से एकाकार कर लेता है, प्रसन्न होकर तथा अपने आप को ही पूर्ण मानकर निष्काम कर्म की धारा में बहता रहता है, अपना जीवन यापन करता रहता है, सहज निष्काम गति से संघर्षों में निरत रहता है मगर उनके परिणामों के प्रति उदास रहता है, और सदा यह मानकर चलता है कि यहाँ पर हम जो कुछ करते हैं वह केवल एक क्रिया मात्र है, वह परम आनंद की प्राप्ति सहज रूप में ही कर लेता है। दो पंक्तियों में कवि उर्वशी के माध्यम से कर्म, निष्काम कर्म की अन्यतम महत्ता का उल्लेख करता हुआ कहता है, हम परमेश्वर के कर्म रूप हैं, अर्थात जो कुछ भी कार्य करते हैं ये सब उसे समर्पित कर देते हैं। कर्म ही हमारा स्वभाव है, कर्म ही आनंद रूप है तथा भविष्य में आने वाले सभी कर्मों का फल स्वयं वर्तमान में किया गया निष्काम कर्म ही है। विशेष उपरोक्त भावों में गीता के अनासक्ति योग तथा निष्काम कर्म का सार तत्व दिया गया है। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी भाव की व्याख्या उपरोक्त पद में है। जब हम कुछ भी नहीं खोजते निज से बाहर जाकर, तब हम कमी नहीं कर्म के रूप स्वयं होते हैं, करते हुए व्यक्त आंसू अथवा उल्लास प्रकृति का। व्याख्या, जब हम अपने आप से बाहर निकलकर कुछ भी खोजने का प्रयत्न नहीं करते और अपने आंसुओं तथा खुशियों को प्रकृति के आंसू तथा उल्लास समझकर उसे समर्पित कर देते हैं, तब हम कर्म करने वाले नहीं कहलाते अपितु स्वयं ही कर्म के साकार रूप हो जाते हैं। यह अकाम आनंद भाग उनका जो नहीं सुखों को आमंत्रण भेजते, न जब कर पथ जोहा करते हैं, न तो बुद्धि जिनकी चिंता कुल यह सोचा करती है, कैसे क्या कुछ करें कि हो सुख पर अधिकार हमारा, और न तो चेतना आकुलित इस भय से रहती है, जाने कौन दुख आ जाए कब किस वातायन से, विधि निषेध से मुक्त न तो पीड़ित सचेष्ट वर्जन से, न तो प्राण को बल समेत बरबस उस ओर लगाए, जिस दृश्य जीवन में सुखधारा फूटा करती है, जब इंद्रियां और मन ऐसी सहज शांत मुद्रा में वातायन खोले चिंता में रहित पड़े होते हैं, तभी किरण निष्कलुष मोद की स्वयं उतर आती है, रवि की किरणों के समान अंबर से खुले भुवन में। जोहा करते यानी इंतजार करते, आकुलित यानी व्याकुल पीड़ित, वातायन यानी झरोखा, सचेष्ट वर्जन यानी किसी काम को न करने में सर्वदा सावधान रहने वाला। व्याख्या, इस निष्काम आनंद का भोग केवल वही कर सकता है जो सुखों को कभी आमंत्रण नहीं भेजता, अर्थात सुख कब आएगा उसे कैसे बुलाऊं, इस प्रकार की समस्याएं हृदय में नहीं लाता, अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए रात दिन जाग जाग कर बाट नहीं देखता, जिनकी बुद्धि सदा इस विषय पर चिंतित नहीं रहती कि ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे सुख के संपूर्ण वैभव पर केवल मेरा ही अधिकार हो जाए। जिनकी चेतना इस भय से व्याकुल नहीं होती कि न जाने कब और किस झरोखे से कौन सा दुख आ जाए तथा मुझे ग्रसित कर ले। जो विधि तथा निषेधमय से मुक्त होता है, कठिन आयाम व्यायाम से हृदय को किसी प्रबल इच्छा को रोकने का प्रयत्न नहीं करता और न जो प्राणों को बलपूर्वक उसी दिशा में लगाए रहता है जिस दिशा में जीवन में सुख की धारा फूटा करती है। कवि कहता है कि जब मनुष्य की इंद्रियां तथा मन अपनी सहज तथा शांत मुद्रा में अपने वातावरण खोल देते हैं तथा चिंता से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, तभी खुले आकाश में सूर्य की किरणों के समान निष्कलुष आनंद की ज्योति स्वयं ही उसमें प्रवेश कर जाती है। विशेष उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ की स्थिति को संकेतित किया है, यथा दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेश विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्तुद्धि धीर मुनिरुच्यते गीता। विधि निषेध है जहाँ वहाँ पर कर्म अकाम नहीं है, विधि निषेध कुछ नहीं नियम है ए अर्जन वर्जन के, अर्जन यानी संचय वर्जन यानी त्याग। व्याख्या, जहाँ पर विधि निषेध होगा वहाँ पर व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर सकता, जबकि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये विधि निषेध अर्जन वर्जन अमुक कार्य को करना चाहिए अमुक को छोड़ देना चाहिए कि नियम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जहाँ अर्जन वर्जन का गणित चला करता है कह सकते हो सजग प्रहरियों की उस बड़ी सभा में एक जीव भी है जिसके कर्मों का ध्येय नहीं है। फलाशक्ति से मुक्त क्रिया में जो उस भांति निरत है जैसे बहता है समीर सर्वथा मुक्त ध्येयों से अथवा जैसे निरुद्देश्य ये फूल खिला करते हैं। व्याख्या, अर्जन वर्जन के नियमों के बंधन से परे हटकर ऐसे स्थान पर जहाँ इस अर्जन वर्जन का गणित चलता रहता है ऐसे कर्मों में सचेत उन सजग प्रहरियों के सामने यह छाती ठोक कर कह सकते हो कि तुम सबसे परे मैं भी एक जीव हूँ जिसके कर्म के फलों का कोई ध्येय नहीं है, अर्थात जो बिना फल की इच्छा किए कर्म करता है, जो फलाशक्ति से मुक्त क्रिया में इसी भांति निरत है जैसे समीर त्रिलोक में घूमता रहता है मगर भ्रमण में उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। वह अपने ध्येय से मुक्त होकर भी संपूर्ण लोकों में अपना पुनीत कर्म करता चलता है। अथवा मेरा फलाशक्ति रहित कर्म ऐसा ही है जैसे फूल निर्देश खिलते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पुष्प अपनी सुवास को बिना किसी पूर्वोद्देश्य के निखिल प्रकृति में फैला देता है और जिसका जन्म ही दूसरे के सुख के लिए होता है, वैसे ही मेरा कर्म भी परहित जन्य होना चाहिए, उसमें अपने स्वार्थ की कोई गंध नहीं होनी चाहिए। हो कोई तो कहो उसे फल का यदि लोभ नहीं है तो फिर चावक मार स्वयं को वह क्यों हाँक रहा है। समर प्रकृति से रूप इंद्रियों पर तलवार उठाए चुका रहा है कि सुख का वह मूल देह दंडन से और कौन सुख है जिसके लुट जाने की शंका से सारी रात नींद से लड़वा आकुल जाग रहा है। शब्दार्थ, समर यानी युद्ध, देह दंडन है शरीर के पीड़न से। प्रसंग, उर्वशी से कहती है, व्याख्या, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो फलाकांक्षी होते हुए भी यह कहे कि उसे फल का कोई लोभ नहीं है तो फिर उससे पूछिए कि वह अर्जन वर्जन रूपी चाबुक मारकर क्यों अपने आप को विशेष दिशा की ओर हाँके लिए जा रहा है, क्यों वह प्रकृति से युद्ध रोपे हुए है अपनी इंद्रियों पर तलवार रूपी अंकुश लगा रहा है, वह अपने देह को जो दंड दे रहा है उससे भला वह कौन से सुख का मोल चुका रहा है और वह कौन सा सुख है जिसके लुट जाने की आशंका से वह सारी रात निद्रा से लड़कर एवं व्याकुल होकर जाग रहा है। और सुनोगे एक भेद, ये प्रहरी जिन घेरों पर रात रात भर धनु का गुण ताने घूमा करते हैं उन घेरों में रक्षणीय कोई भी सार नहीं है। कुछ भूखी रिक्तता चेतना की कुछ फेन हवा के कुछ थोड़ी यह दशा की ऐसी कोई युक्ति निकालें जिससे मृतकरों में भी पड़ने पर नहीं मरे हम, किंतु अधिक यह भाव वैर है प्रकृति और ईश्वर में, अतः सिद्ध के लिए प्रकृति से हमें दूर होना है। शब्दार्थ, प्रहरी यानी आत्मा या मन के पहरेदार, गुण यानी प्रत्यंचा धनुष की डोरी, रिक्तता यानी अभाव, फेन यानी झाग। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने उर्वशी के मुख से विभिन्न शेयरों में बंद कर प्रकृति से आंचल छुड़ाकर भागने वाले प्रहरियों अर्थात योगियों के अनुपयुक्त अमरत्व की भावना पर व्यंग करते हुए प्रकृति और ईश्वर में अभेद संबंध प्रदर्शित किया है। व्याख्या, एक और रहस्यमय बात यह है कि आत्म संयमन करने वाले रात रात भर अपनी साधना के धनुष पर संयम अर्थात अर्जन वर्जन की प्रत्यंचा चढ़ाकर मन के उन घेरों में प्रहरी बनकर घूमते हैं जिनके समीप कोई भी तो रक्षा करने योग्य तत्व नहीं है। यह तो उनकी भूखी चेतना का खोखलापन है जिसमें सुखद कल्पनाओं के झाग उड़कर रह जाते हैं। मन की पिपासा को मरने के बाद भी वे अमर रहें बुझाने के लिए वे इस प्रकार की श्रम साध्य युक्तियाँ निकालने को व्यग्र रहते हैं, किंतु इससे भी अधिक भाव इसके मन में यह है ईश्वर और प्रकृति में शत्रुता है और इसलिए अमृत की सिद्धि के लिए ये दूर भागना चाहते हैं।